रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये हमारे पूरे शरीर में घूमता हुआ विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। ये हमारे शरीर के वजन का 8% बनता है। एक औसत वयस्क के पास लगभग 5-6 लीटर रक्त होता है। रक्त कोशिकाओं के प्रकार हमने देखा है कि रक्त कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें रक्त के निर्मित तत्व कहा जाता है। शरीर में इन कोशिकाओं के अपने कार्य और भूमिकाएं होती हैं। शरीर के चारों ओर घूमने वाली रक्त कोशिकाएं इस प्रकार हैं। लाल रक्त कोशिकाएं एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी मनुष्यों में केंद्रक रहित उभयलिंगी कोशिकाएं हैं, एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक आयरन से भरपूर प्रोटीन होता है। खून को उसका लाल रंग दो। आरबीसी अस्थि मज्जा में उत्पादित सबसे प्रचुर रक्त कोशिकाएं हैं। उनका मुख्य कार्य विभिन्न ऊतकों और अंगों से ऑक्सीजन पहुंचाना है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स रंगहीन रक्त कोशिकाएं हैं। ये रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इन्हें आगे ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। WBC मुख्य रूप से प्रतिरक्षा और रक्षा तंत्र में योगदान करते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार श्वेत रक्त कोशिकाएं 5 अलग अलग प्रकार की होती हैं और इन्हें मुख्य रूप से कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ग्रैन्युलोसाइट्स एग्रैन्युलोसाइट्स ग्रैन्युलोसाइट्स वे ल्यूकोसाइट्स हैं जिनकी साइटोप्लाज्म में कणिकाओं की उपस्थिति होती है। दानेदार कोशिकाओं में शामिल हैं इओसिनोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओस्ट्रोफिल्स वे ल्यूकोसाइट्स की कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद होती हैं। ये कोशिकाएं कशेरुकी जंतुओं के परजीवियों में संक्रमण से लड़ने और एलर्जी और अस्थमा से जुड़े तंत्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इओसिनोफिल कोशिकाएं छोटी ग्रैनुलोसाइट होती हैं जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है और संपूर्ण WBC का 2-3% बनाती हैं। ये कोशिकाएं पाचन तंत्र में उच्च सांद्रता में मौजूद होती हैं। बेसोफिल वे ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे कम आम है जो WBC के 0.5-1% तक हैं। उनमें बड़े साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल होते हैं जो हिस्टामाइन जारी करके और रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके रोगजनकों और एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए एक गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन श्वेत रक्त कोशिकाओं में मूल रंगों के संपर्क में आने पर दाग पड़ने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें बेसोफिल कहा जाता है। इन कोशिकाओं को अस्थमा में उनकी भूमिका और वायुमार्ग में सूजन और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के परिणामस्वरूप जाना जाता है। वे सेरोटोनिन हिस्टामाइन और हेपरिन का स्राव करते हैं। 3. न्यूट्रोफिल वे आमतौर पर रक्त प्रवाह में पाए जाते हैं। वे प्रमुख कोशिकाएं हैं जो मवाद में मौजूद होती हैं। लगभग 60-65% WBC 10-12 माइक्रोमीटर व्यास वाले न्यूट्रोफिल होते हैं। केंद्रक 2-5 पालियों वाला होता है और कोशिका द्रव्य में बहुत बारीक कण होते हैं। न्यूट्रोफ लाइसोसोम के साथ बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है और यह एक मजबूत ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। न्यूट्रोफिल को केवल तटस्थ रंगों का उपयोग करके रंगा जाता है, इसलिए उन्हें ऐसा कहा जाता है। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया या वायरस जैसे आक्रमणकारी पर प्रतिक्रिया करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की पहली कोशिकाएं भी हैं। इन WBCs का जीवनकाल 8 घंटे तक बढ़ता है और अस्थि मज्जा में प्रतिदिन निर्मित होता है। एग्रैन्युलोसाइट्स वे ल्यूकोसाइट्स हैं, उनके साइटोप्लाज्म में कणिकाओं की अनुपस्थिति होती है। एग्रैन्युलोसाइट्स को आगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में वर्गीकृत किया गया है। 1. मोनोसाइट्स इन कोशिकाओं में आमतौर पर 12-20 माइक्रोमीटर के व्यास के साथ एक बड़ा बिलोबेड नाभिक होता है। केंद्रक आमतौर पर आधे चांद के आकार का या गुर्दे के आकार का होता है और यह 6-8% WBC पर कब्जा कर लेता है। वे प्रतिरक्षा प्रणाली के कचरा ट्रक हैं। मोनोसाइट्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊतकों में स्थानांतरित होना और मृत कोशिकाओं को साफ करना, रक्तजनित रोगजनकों से रक्षा करना और ऊतकों में संक्रमण के स्थानों पर बहुत तेजी से जाना है। इन श्वेत रक्त कोशिकाओं में एक बीन के आकार का नाभिक होता है, इसलिए इन्हें मोनोसाइट्स कहा जाता है। 2. लिम्फोसाइटों वे एंटीबॉडी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका आकार 8-10 माइक्रोमीटर तक होता है। इन्हें आमतौर पर प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ये शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं लिम्फोइड ऊतक में बनी रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स के 2 मुख्य प्रकार हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है और ह्यूमल और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। 3. प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स अस्थि मज्जा से निर्मित विशेष रक्त कोशिकाएं हैं। रक्तस्राव या रक्तस्राव होने पर प्लेटलेट्स काम में आते हैं। ये रक्त का थक्का जमने और जमने में मदद करते हैं। कटने या घाव लगने पर प्लेटलेट्स जमने में मदद करते हैं। रक्त के घटक रक्त की संरचना में कई कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। जब रक्त का एक नमूना एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है तो वे निम्नलिखित घटकों में अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा, बफी कोट और एरिथ्रोसाइट्स। इस प्रकार रक्त में RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा रक्त की तरल अवस्था को प्लाज्मा में योगदान दिया जा सकता है क्योंकि यह रक्त का टिल्ड 55% बनाता है। अलग होने पर इसका रंग हल्का पीला होता है। रक्त प्लाज्मा में लवण, पोषक तत्व, पानी और एंजाइम होते हैं। रक्त प्लाज्मा में महत्वपूर्ण प्रोटीन और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अन्य घटक भी होते हैं। इसलिए लीव की विफलता और जीवन घातक चोटों वाले रोगियों को रक्त प्लाज्मा आधान दिया जाता है। रक्त प्लाज्मा के घटक रक्त प्लाज्मा में कई प्रोटीन घटक होते हैं। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन है सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन। सीरम में केवल ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन होते हैं। सीरम में फाइब्रिनोजेन अनुपस्थित होता है क्योंकि यह रक्त के थक्के जमने के दौरान फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं RBC, लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन से बनी होती हैं। वे मुख्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन और उससे दूर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के लिए अस्थि मज्जा द्वारा उत्पादित होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले विदेशी रोगजनकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कवक से लड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। वे हमारे पूरे शरीर में घूमते हैं और अस्थि मज्जा से निकलते हैं। प्लेटलेट्स छोटी डिस्क के आकार की कोशिकाएं शरीर के किसी भी हिस्से के क्षतिग्रस्त होने पर रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जिससे रक्त का थक्का जमने से तेजी से ठीक होने में मदद मिलती है। उपर्युक्त तत्व मनुष्यों में रक्त की संरचना बनाते हैं। हीमोग्लोबिन के बिना एकमात्र कशेरुक मगरमच्छ आइस फिश है। यह अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता सीधे ठंडे ऑक्सीजन युक्त पानी से प्राप्त करता है जहां ये रहता है। रक्त के कार्य रक्त शरीर के निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। 1. द्रव संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो 55% प्लाज्मा और 45% WBC, RBC और प्लेटलेट सहित गठित तत्वों से बना है। चूंकि ये जीवित कोशिकाएं प्लाज्मा में निलंबित होती हैं, रक्त को केवल तरल नहीं बल्कि एक तरल संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है। 2. कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और इसे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाता है और बाहर निकल जाता है। 3. हार्मोन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ग्लूकोज, विटामिन, खनिज और प्रोटीन जैसे पचे हुए पोषक तत्व छोटी आंत की परत में केशिकाओं के माध्यम से रक्त में अवशोषित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन भी रक्त द्वारा विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। 4. समस्थिति रक्त गर्मी को अवशोषित या मुक्त करके शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। 5. चोट के स्थान पर रक्त का थक्का जमना प्लेटलेट्स चोट वाली जगह पर खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। फाइब्रिन के साथ प्लेटलेट्स घाव स्थल पर थक्का बनाते हैं। 6. गुर्दे और यकृत तक अपशिष्ट का परिवहन। रक्त गुर्दे में प्रवेश करता है जहां इसे रक्त प्लाज्मा से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए फिल्टर किया जाता है। रक्त से विषाक्त पदार्थों को भी लीवर द्वारा बाहर निकाला जाता है। 7. रोगजनकों से शरीर की सुरक्षा। श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती हैं। संक्रमण के दौरान ये तेजी से बढ़ते हैं। रक्तवाहिकाएं रक्तवाहिकाओं के प्रकार रक्तवाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। 1. धमनियों धमनियां मजबूत नलिकाएं और प्रकृति में पेशीय होती हैं। ये रक्तवाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाती हैं। महाधमनी मुख्य धमनियों में से एक है जो हृदय और आगे की शाखाओं से निकलती है। 2. नसों नसें लोचदार रक्तवाहिकाएं होती हैं जो शरीर के सभी हिस्सों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। 1. अपवाद नाभि और फुफ्फुसीय नसें हैं। पल्मोनरी नस फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है और नाभि शिरा प्लेसेंटा से भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। 3. केशिकाओं ऊतकों तक पहुंचने पर धमनियां आगे चलकर अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है। केशिकाएं रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। साइनसोइड्स अस्थि मज्जा, यकृत, लिम्फ नोड्स, प्लीहा और कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों में मौजूद एक विशेष प्रकार की व्यापक केशिकाएं हैं। वे निरंतर, असंतत या फेनेस्ट्रेटेड हो सकते हैं। रक्तवाहिकाओं की परतें धमनियां और शिराएं दोनों तीन परतों से बनी होती हैं। ट्यूनिका इंटिमा, ये धमनियों और शिराओं की सबसे भीतरी और सबसे पतली परतों में से एक है। इसमें एंडोथेलियल कोशिकाएं शामिल हैं। वे रक्त के प्रवाह के सीधे संपर्क में होते हैं। ट्यूनिका मीडिया, ये धमनी या शिरा की मध्य परत है। ट्यूनिका मीडिया चिकनी मांसपेशी कोशिकाओं से बना होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया को घेरे रहती है। ये कोलेजन से बना होता है और धमनियों में लोचदार लेमिना द्वारा भी समर्थित होता है। अभ्यास प्रश्न, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार बताइए। रक्त के विभिन्न घटकों के नाम बताइए। एग्रानुलोसाइट्स क्या है? रक्त के कार्य लिखिए।